अध्याय 5। जापान में राजनीतिक दलों का उदय एवं विकास। राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन जापान। पृष्ठ संख्या 55। हारू हीरो फुकुई के अनुसार राजनीतिक दल राजनीतिक सिद्धांतों या नीतियों को सरकार में शामिल होकर समर्थन और बढ़ावा देने के लिए संगठित किए गए गुट होते थे। पॉलिटिकल पार्टीज आर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज टू एडवोकेट एंड फॉर्मुलेट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिसीज थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। ऐसे गुट जापान में मेजी पुनर्स्थापन के बाद उभर कर आए। इन राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषता यह थी कि वे मेजी संविधान के लागू किए जाने और लोकतंत्रात्मक सरकार की शुरुआत से पहले ही अस्तित्व में आ गए थे। जापानी राजनीतिक दलों का उदय तोकुगावा विरासत और उस आंदोलन का परिणाम था जो मेजी पुनर्स्थापन के बाद होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित हुआ था। पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांतों का योगदान भी जापानी राजनीतिक दलों के उदय में व्यापक स्तर पर देखा गया। तोकुगावा राजनीति सामंतीय जागीरदारी पर नियंत्रण, सामाजिक ढांचे और राष्ट्रीय पृथकता पर आधारित थी। वास्तव में तोकुगावा शक्ति दो मूलभूत उद्देश्यों पर आधारित थी। पहला, एकता और केंद्रित शक्ति को बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ यूनिटी एंड सेंट्रलाइज्ड पावर, तथा दूसरा, यथापूर्व स्थिति को स्थिरता देना, परपेचुएशन ऑफ द स्टेटस क्यो। शौकीन कोताय प्रणाली का प्रयोग शासकीय वर्गों की शक्ति को नियंत्रण में रखने तथा चार प्रमुख खानों को अलग-अलग रखने के लिए किया गया। इस प्रणाली ने केवल अनुलंबित संबंधों को ही बढ़ावा दिया। बाकुफू प्रशासन जी भरकर विभिन्न खानों का वित्तीय शोषण कर रहा था और इसी कारण हानों में विद्यमान सत्ता के विरुद्ध निरंतर रोष व्याप्त रहता था। जब राजनीतिक परिवर्तन आया, तब नवनिर्मित राज्य में सभी ने अधिकाधिक राजनीतिक शक्ति को हड़पने का प्रयास किया। जनवरी 1868 में जब तोकुगावा कोइकी ने सम्राट के पक्ष में सत्ता का त्याग किया, तब न केवल तोकुगावा शासन की समाप्ति हुई बल्कि मेजी पुनःस्थापन की शुरुआत भी हुई। उसी वर्ष सम्राट मेजी द्वारा क्योटो स्थित शाही महल में एकत्रित अभिजात व्यक्तियों, समुरायों तथा अधिकारियों के समक्ष 5 अनुच्छेदों की शाही अधिकार पत्र शपथ को जारी किया गया। इसके प्रथम अनुच्छेद में यह कहा गया कि विमर्शी सभाओं की स्थापना की जाएगी और विषयों का निर्धारण जनमत द्वारा होगा। डेलिब्रेटिव असेंबलीज शैल बी एस्टेब्लिश्ड एंड ऑल मैटर्स बी डिसाइडेड बाई पब्लिक ओपिनियन। सच्चो कुलीन तंत्र द्वारा सत्ता को अपने हाथ में लिए जाने के बाद राज्य के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया। जहां एक ओर राज्य के प्रति भक्ति और सोननो जोई तथा फुकोकू क्यो हेई जैसे नारों की गुंजित किया गया, वहीं दूसरी ओर नया कुलीन तंत्र पश्चिमी राजनीति और दर्शन शास्त्र से नए विचारों को ग्रहण करने के लिए तत्पर था। सरकारी अधिकारियों को जर्मनी जैसे देशों के सरकारी ढांचों के स्वरूप को समझने और उनका अध्ययन करने के लिए भेजा गया। परंतु 1869 में अनुमोदित मेजी संविधान ने जापानी राजनीति के उस स्वरूप को स्पष्ट कर दिया जो नौकरशाही के प्रभाव को बनाए रखना चाहती थी। वास्तव में अधिकारियों ने पहले तो उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन जब अधिक परिवर्तन की मांग की गई, तब यही उदारता कठोर नीतियों में बदल गई। इस तरह जापान में राजनीतिक दलों का जन्म सरकारी अनिच्छा और दमन के वातावरण में हुआ। मेजी युग ने जिन दूरगामी परिवर्तनों का सूत्रपात किया था, उन्होंने सामाजिक तनाव को जन्म देकर विभिन्न वर्गों में असंतोष पैदा कर दिया। इतिहासकार E.H. नॉर्मन ने इस स्थिति का विवरण देते हुए कहा है कि पुराने सामंती वर्गों की समाप्ति और नए सामाजिक बलों के जन्म ने न केवल उलझने और कटुता पैदा की, बल्कि उन उम्मीदों को जन्म दिया जो अक्सर निराशा में बदलती देखी गई। संक्रमण काल में अस्पष्ट राजनीतिक विभाजन सामने नहीं आया, लेकिन जो धुंधली प्रवृत्तियों की रूपरेखा उभर कर सामने आई, वह बाद में अस्पष्ट कार्यक्रम वाले राजनीतिक दलों में बदल गई। सबसे अधिक असंतुष्ट सामाजिक वर्ग समुराय थे। शोगुन प्रशासन के अधीन समुराय एक शासकीय वर्ग थे, परंतु नए स्थापित प्रशासन में इस वर्ग का महत्व जाता रहा। 1870 में सभी हानों को भूमि पर अधिकार त्यागना पड़ा और इसके बदले में दी गई निर्धारित धनराशि को बहुत जल्दी ही 30% कम कर दिया गया। 1871 में लागू की गई अनिवार्य सैनिक सेवा में समुदायों का सैनिक कार्यों पर एकाधिकार समाप्त हो गया। इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक अधिकारों को खोकर निराशोन्मुख यह वर्ग उस मौके की तलाश में था जो उसे दोबारा सब कुछ प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर दे। मेजी कुलीन तंत्र केवल 6 वर्षों तक की जुटा मेजी कुलीन तंत्र केवल 6 वर्षों तक ही एकजुट रहा। सत्सुमा और चोसु वंशों से जुड़े हुए लोगों की बढ़ती हुई शक्ति का विरोध तोसा हिजेन और कई अन्य हानों से संबंधित लोगों द्वारा किया जाने लगा था। शासकीय वर्ग के आपसी मतभेद 1873 में कोरिया में सैनिक अभियान के प्रश्न को लेकर सामने आ गए। सत्ता से वंचित समुदायों के लिए अपने सैनिक क्षमता प्रकट करने और खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का यह स्वर्णिम अवसर था। इस असंतुष्ट गुट, जिसका नेतृत्व शैगो ताकामोरी ने किया, को साम्राज्यवादी नीति का समर्थन करने वाले अधिकारियों एवं तोसा और हिजेन जैसे छोटे वंशों का सहयोग प्राप्त था। यह सभी चाहते थे कि कोरिया में सेना भेजी जाए, परंतु किदो ओकुबा जैसे अधिकारियों ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वे आंतरिक सुधारों को अधिक महत्व देते थे। जब कोरिया में सेना भेजे जाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया, तब युद्ध समर्थक पक्ष, जिसमें सैगो, इतागाकी, सुएजीमा, गोतो और ईतो प्रमुख थे, ने अपना त्यागपत्र दे दिया। नोबुतका ईके ने समय के राजनीतिक ढांचे का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया है कि उसमें 3 मुख्य वर्ग उभर कर आए। उनमें से एक का प्रतिनिधित्व ओकुमा किदो, ईतो ओकुमा, यामागाता एवं इवाकुरा ने किया, जिन्होंने न केवल सरकार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था, बल्कि वे एक ऐसे निरंकुश राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें जन अधिकार बाधा न डाल सके। इस गुट में सत्सुमा और चुशु वंशों से आए अधिकारी शामिल थे। दूसरे गुट में असंतुष्ट समुराय थे, जिन्हें सैगो ताकामोरी, जो बाद में 1877 के सत्सुमा विद्रोह के नेता बने, ने नेतृत्व प्रदान किया। तीसरे गुट में इतागाकी और उन जैसे विचारों वाले व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने सरकार से त्यागपत्र देकर उसका विरोध करने का फैसला किया था। इस प्रकार, जैसे कि ई.एच. नॉर्मन ने टिप्पणी की है, व्यक्तिगत स्थान प्राप्ति की इच्छा और सच्चु एकाधिकार से ईर्ष्या ने जापान में उनकी राजनीतिक संस्थाओं को संगठित करने की प्रेरणा दी। इंडिविजुअल प्लेस सीकिंग एंड जिलसी ऑफ द सतचो मोनोपोली एक्टेड एज स्टिमुलस फॉर ऑर्गेनाइजिंग दियर फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन जापान। जीव मिंकेन उन्दो, अर्थात उदार और राजनीतिक अधिकार आंदोलन। पृष्ठ संख्या 57। जीव मिंकेन उन्दो ने उस प्रक्रिया को शुरू किया जिसने अंततः राजनीतिक दलों को जन्म दिया। इस आंदोलन को स्वार्थपरायण व्यक्तियों ने नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों ने नेतृत्व प्रदान किया जो पश्चिमी उदारवादी विचारों से प्रभावित हो चुके थे। इस आंदोलन का नेतृत्व तोसा और हिंजेन वंशों के भूतपूर्व समुदायों द्वारा किया गया। इन समुदायों में से अनेकों ने व्यक्तिगत स्तर पर बड़े बड़े त्याग भी किए। इस उदारवादी आंदोलन को संवेग और प्रेरणा साधारण किसानों, काश्तकारों, और शहरी निर्धनों के समर्थन ने प्रदान किया। 1870 के दशक में जापान में व्यापक स्तर पर आर्थिक तनाव दिखाई पड़ने लगा। राज्य द्वारा निर्धारित भूमि कर के विरोध में किसानों द्वारा 12 विद्रोह किए गए। जापानियों की मुख्य भोजन चावल की बढ़ती हुई कीमतों ने काश्तकारों और वेतनभोगी मजदूरों की स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। किसानों द्वारा अनिवार्य सैन्य भर्ती कंस्क्रिप्शन का विरोध भी किया गया। इन असंतुष्ट तत्वों ने मिलकर जब उदार और राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन को जन्म दिया, तब उन्होंने न केवल जन राष्ट्रीय सभा की स्थापना की मांग ही की, बल्कि करों की दर में कटौती और इस आंदोलन में अपने अस्पष्ट प्रतिनिधित्व की मांग भी की। दूरदराज के गांवों में निवास करने वाले किसानों ने यद्यपि इस आंदोलन को अपना समर्थन तो दिया, परंतु उनके लिए इसमें सक्रिय हिस्सा लेना कठिन था। यही कारण था कि स्थानीय राजनीति में बड़े भूमिपतियों द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई। शहरों में समृद्ध पूंजीपति वर्ग और बुद्धिजीवियों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। प्रारंभ में अनेक राजनीतिक सभाओं की स्थापना की गई। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। आए कोकू कोतो अर्थात देशभक्तों की सार्वजनिक सभा, पब्लिक सोसाइटी ऑफ पैट्रियोट्स। इस सभा का जन्म गोतो और इतागाकी जैसे उन नेताओं द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ था जो स्वयं पाश्चात्यवाद से प्रभावित हुए थे और जिन्होंने पश्चिम में प्रसारित उदार विचारों को आत्मसात किया था। इस राजनीतिक सभा का नेतृत्व इतागाकी ने किया। इसका उद्देश्य प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना के लिए जनमत पैदा कर। इसका कार्यक्रम तीन प्रमुख लक्ष्यों पर आधारित था। पहला, राष्ट्रीय सभ्यता के विकास में सहयोग देना। इसके लिए देश में मानव के प्राकृतिक अधिकारों के प्रति सम्मान को जागृत करना जरूरी समझा गया। दूसरा, देश की उन्नति हेतु सम्राट और जापान के निवासियों का एकीकरण। इस उद्देश्य की प्राप्ति भी व्यक्तिगत अधिकारों को विकसित करके ही की जा सकती थी। तीसरा, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा सभी कठिनाइयों को सहन करने का प्रण किया गया। इस राजनीतिक सभा द्वारा यह दावा किया गया कि उसका उद्देश्य केवल शाही शपथ को कार्यान्वित करना था। इन घोषणाओं ने सरकार को और भी कठिनाई में डाल दिया। यद्यपि इस राजनीतिक सभा के उद्देश्य अनूठे थे, परंतु यह केवल उन बुद्धिजीवियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाई जो स्वयं पश्चिमी राजनैतिक चिंतन का अध्ययन करके अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे। यह सभा किसी राजनैतिक दल को जन्म देने में असमर्थ रही और शीघ्र ही इसका पतन हो गया। ऋषशिशा अर्थात चिंतकों की सभा, सोसाइटी ऑफ थिंकर्स। तोषा वंश के बुद्धिजीवियों द्वारा ऋषशिशा की स्थापना की गई। यह बुद्धिजीवी फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतन से अधिक प्रभावित थे। इसके संस्थापक इतागाकी ताएसुके थे। उन्होंने अपनी सभा में कायमन गीशा और आयकोकु को के सदस्यों को सफलतापूर्वक शामिल किया। इसके अधिकांश सदस्य कोची प्रांत के समुराय थे। स्वशासन, स्थानीय स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकारों, विधानसभा की स्थापना और सभी वर्गों की समानता प्राप्त करने के लक्ष्य से 1933 में प्रकाशित इसके दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य शिजोकू की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। शिजोकू शब्द का प्रयोग मेजी पुनः स्थापन के बाद समुराय के लिए किया गया। ऋषशिशा द्वारा अनेक बुद्धिजीवियों को राजनैतिक भाषणों के लिए आमंत्रित किया गया। इनके द्वारा फ्रांसीसी क्रांति और जेरेमी बेंथम तथा जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे राजनैतिक चिंतकों के विचारों को स्पष्ट किया गया। 1877 में इस सभा ने सरकार को दी गई एक प्रज्ञप्ति में स्थापित व्यवस्था की निहित कमजोरियों को उजागर किया और यह मांग की कि सम्राटीय अनुमति से राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा की स्थापना की जाए। ऋषशिशा के अधिकांश सदस्य केवल तोसा वंश से आए थे और इसके सामंतीय स्वरूप के कारण इसमें जनसाधारण की भागीदारी संभव ही नहीं थी। इन कमजोरियों के बावजूद इन प्रारंभिक राजनैतिक सभाओं द्वारा ही राजनैतिक दलों की स्थापना के लिए सशक्त पृष्ठभूमि तैयार की गई।